ओम शांति। 20/8/71 की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली। सबसे श्रेष्ठ तख्त और ताज। आज यह भट्टी का ग्रुप डबल भट्टी करने के लिए आए हुए हैं। डबल भट्टी कौन सी है? डबल भट्टी के रहस्य को समझते हो? मधुबन तो है ही भट्टी, लेकिन मधुबन भट्टी के अंदर भी विशेष कौन सी भट्टी ने अपने रहे हुए संस्कारों को भस्म करने लिए आए हैं? तो डबल भट्टी का फोर्स भी बढ़ता है ना, क्योंकि कोर्स मिलता है। एक तो जनरल, दूसरा पर्सनल। डबल कोर्स होने कारण डबल फोर्स भी बढ़ता है। तो जैसे डबल फोर्स बढ़ता है, वैसे ही सदा अपने को डबल ताजदारी समझकर चलते रहे, तो यह डबल कोर्स सदैव फोर्स में रहे। डबल ताज कौन सा है? अभी डबल ताजदारी हो कि भविष्य में बनेंगे? अभी डबल ताज कौन सा है? एक है लाइट, अर्थात प्योरिटी की निशानी का, और दूसरा है जो संगम युग पर सर्व प्राप्तियां होती है, जिस शक्ति द्वारा ही जिम्मेवारी को धारण कर सकते हैं। तो लाइट का क्राउन भी और माइट का भी है, प्योरिटी का भी और पावर का भी। यह डबल ताज निरंतर धारण करने वाले। तो बताओ, डबल फोर्स सदा कायम नहीं रहेगा? दोनों की आवश्यकता है और दोनों सदा कायम रहने से सदा शक्तिशाली स्वरूप दिखाई देंगे। सर्विस में सफलता प्राप्त करने लिए भी यह दो ताज आवश्यक है। फिर जितना जितना नंबरवार हर एक ने धारण किए हैं, उस प्रमाण स्वरूप में सफलता व अपने पुरुषार्थ में सफलता पाते जा रहे हैं। तो डबल ताज भी चाहिए और डबल तख्त भी चाहिए। डबल तख्त कौन सा है? हर एक ने अपना अपना रिस्पॉन्स किया। एक तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन होना है। सभी से श्रेष्ठ तख्त तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना ही है। साथ साथ इस तख्त पर बैठने के लिए भी अचल अड़ोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह अचल अड़ोल एक रस स्थिति का तख्त बहुत आवश्यक है। इस तख्त से बार बार डगमग हो जाते हैं। इसलिए अपने अकाल तख्त नशीन न बनने के कारण इस एक रस स्थिति के तख्त पर भी स्थित नहीं हो सकते। तो अपने इस ब्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित होंगे तो एक रस स्थिति के तख्त पर और बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। तो डबल ताजदारी भी हो, डबल तख्त नशीन भी हो और जो नॉलेज मिल रही है वह नॉलेज भी मुख्य दो बातों की है। वह कौन सी है? नॉलेज भी मुख्य दो बातों की मिलती है ना, अल्फा और बे। कहो वा रचयिता और रचना कहो। रचना में पूरी नॉलेज आ जाती है तो रचयिता और रचना इन दोनों मुख्य बातों में अगर नॉलेजफुल है तो पावरफुल भी बन सकते हैं। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमजोर है तो स्थिति डगमग होती है। रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते। जानना अर्थात मानना और चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। जो जानता मानता और चलता भी है। अगर मानना और चलना नहीं है तो नॉलेजफुल व ज्ञान स्वरूप नहीं कहा जाता। चलना मानना अर्थात स्वरूप बनना। कुछ न कुछ रचयिता और रचना के नॉलेज की कमी हो जाने कारण पुरुषार्थ में कमी पड़ती है। इसलिए सारी नॉलेज की इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए चलो। अच्छा, यह तो हुई नॉलेज। ऐसे ही जबल कर्तव्य में भी रहना है। यह जबल कर्तव्य कौन सा है? आज दो की गिनती ही सुना रहे हैं। दो कर्तव्य बताओ। सारे दिन में जबल कर्तव्य आपका चलता रहता है। मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का। कुछ विनाश करना है और कुछ रचना रचनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो और दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना और व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी, दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। इसी कार्य में सारा दिन बिजी रहे तो बताओ एकरस स्थिति नहीं हो सकती? एकरस स्थिति नहीं रहती। उसका कारण रचना रचने नहीं आती वा विनाश करना नहीं आता। दोनों कर्तव्य में कमी होने कारण एकरस स्थिति ठहर नहीं सकती। इसलिए डबल कर्तव्य में रहना है। यह डबल कर्तव्य भी तब कर सकेंगे जब पोजीशन में रहेंगे। डबल पोजीशन कौन सा है? इस समय का पूछ रहे हैं। डिटी देवत्व से इस समय का गॉडली पोजीशन हाईएस्ट है। तो एक यह पोजीशन है कि गॉडली चिल्ड्रन है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी है। यह हुआ साकारी पोजीशन और दूसरा है निराकारी पोजीशन। हम सभी आत्माओं से हीरो पाटदारी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं है और दूसरा पोजीशन है ईश्वरीय संतान ब्रह्मा कुमार कुमारीपन का। यह दोनों पोजीशन स्मृति में रहे तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाओं के वा ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत हो। इसलिए यह दोनों पोजीशन स्मृति में होंगी तो माया की अपोजिशन खत्म हो जाएगी। इसलिए डबल पोजीशन भी सदैव स्मृति में रखो। अच्छा, डबल निशाना कौन सा है? जो डबल नशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना। साकार में रहते हुए अपने को निराकारी समझकर चलना। एक सोल कॉन्शियस व आत्म अभिमानी बनने का निशाना और दूसरा निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा की भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है। तो एक है निराकारी निशाना और दूसरा है साकारी। तो निराकारी और निर्विकारी, यह है दो निशानी। सारा दिन पुरुषार्थ योगी और पवित्र बनने का करते हो ना, जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी न बने है तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत स्टेज कहो, लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात पांच तत्वों की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का न हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। तो यह डबल निशाना भी सदैव स्मृति में रखना और डबल प्राप्ति कौन सी है? अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति, उसमें शांति और खुशी समाई हुई है। यह हुआ संगम युग का वर्षा। अभी जो प्राप्ति है वह फिर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा। बाप की प्राप्ति भी सारे कल्प में नहीं कर सकते और बाप द्वारा अभी जो वर्षा मिलता है वह भी सारे कल्प के अंदर अभी ही मिलता है, फिर कभी भी नहीं मिलेगा। इस समय की प्राप्ति अति इंद्रिय सुख और फुल नॉलेज फिर कभी भी नहीं मिल सकती। तो दो शब्दों में डबल प्राप्ति, बाप और वर्षा, इसमें नॉलेज भी आ जाती है तो अति इंद्रिय सुख भी आ जाता और रूहानी खुशी भी आ जाती, रूहानी शक्ति भी आ जाती है। तो यह है डबल प्राप्ति। समझा? यह सभी दो दो बातें धारण तब कर सकेंगे जब अपने को भी कंबाइंड समझेंगे। एक बाप और दूसरा मैं कंबाइंड समझने से यह सभी दो दो बातें सहज धारण हो सकती है। भट्टी में आए हो ना, तो यह सभी जो दो दो बातें सुनाई वह अच्छी तरह से स्मृति स्वरूप भट्टी से बनकर जाना, सिर्फ सुनकर नहीं जाना। सुना तो बहुत है, सुनना अर्थात मानना और चलना अर्थात स्वरूप बनना। तो ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप बनकर जाना, योगी हो लेकिन योग युक्त युक्ति युक्त बनकर जाना, तपस्वी कुमार हो लेकिन त्याग मूरत भी बन जाना। त्याग मूरत के बिना तपस्वी मूरत बन नहीं सकते। तो तपस्वी हो लेकिन साथ साथ त्याग मूरत भी बनना है। ब्रह्मा कुमार हो लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्राह्मणों के कुल की मर्यादाओं को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाना। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपके एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डाले। ऐसे पावरफुल बनकर जाना। पावर है लेकिन पावरफुल बनकर जाना। जो फुल होता है वह कभी फेल नहीं होता। फुल की निशानी है एक तो फील नहीं करेंगे, दूसरा फेल नहीं होंगे और फ्लॉ नहीं होगा। तो फूल बनकर जाना, इसलिए भट्टी में आए हो। क्या सीखना है? बहुत पाठ पढ़ा, इतना पाठ प्रैक्टिकल में पढ़कर जाना। पाठ ऐसा पक्का करना जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी पाठ बन जाए। एक पाठ होता है मुख से पढ़ना, एक होता है सिखलाना। मुख से पढ़ाया जाता है, एक्ट से सिखाया जाता है। तो हर चलन एक एक पाठ हो। जैसे पाठ पढ़ने से उन्नति को पाते हैं ना, इस रीति से आप सभी की एक एक एक्ट ऐसा पाठ सभी को पढ़ाए व सिखलाए जो उन्नति को पाते जाए। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। सप्ताह का कोर्स तो सभी ने कर लिया है ना? साप्ताहिक कोर्स जो किया है वह फोर्सफुल किया है या सिर्फ कोर्स किया है? कोर्स का अर्थ ही है अपने में फोर्स भरना। अगर फोर्स नहीं भरा तो कोर्स भी क्या किया? निर्बल आत्मा से शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए कोर्स कराया जाता है। तो अगर कोर्स का फोर्स नहीं है तो वह कोर्स हुआ? तो अभी फोर्सफुल कोर्स करने के लिए आए हो ना? अच्छा, ओम शांति।